نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دورہ قرآن 2024 2024 اور آج ہم اس میں سے کریں گے پارہ نمبر 25 الیہ یرد علم الساعہ. کیا خوبصورت پارا ہے اور اس کے اندر کیا قیامت کے دلائل ہیں اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو نافذ کر لو گے تو تمہاری زندگیاں اس دنیا میں ہی رہتے ہوئے جنت نما بن جائیں گی. یہ ہے اس پارے کا خلاصہ. اور میں اکثر سوچتی ہوں, خاص طور پہ آج کے پارے کے مضمون کو سننے کے بعد یقیناً آپ بھی سوچیں گے کہ یہ جرم کس سے ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں سکھایا. یعنی مراد یہ کہ ہمیں نہیں سکھایا کسی نے. اب تو نہیں غلطی کرنی یہ انشاءاللہ, لیکن یہ غلطی ہوئی ہمارے بڑوں اور ان کے بڑوں اور بڑوں کے بڑوں سے یہ غلطی ہوئی ہے. پچھلی پوری جنریشن اس غلطی کی سزا بھگت رہی ہے, اور یہ ایک نہیں دو نسلیں اوپر کی جن کو میں اور آپ آج دیکھ رہے ہیں, اور اس سے اوپر اب کئی نسلوں سے یہ زوال آنا شروع ہوا تھا. جس دن سے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق باتیں کرنے سے زیادہ ثواب اور حصول ثواب اور برکتوں والا ہو گیا, اسی دن سے ہماری زندگیوں میں کہہ لیجئے کہ برکت چلی گئی. یہ قرآن تو حقیقت میں ایک تھنگس ٹو ڈو تھی, اور وہی نہیں سمجھ آتی اس بات کو. تو آج مسلمان تو نہ کچھ کہیں لیکن گورے بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں, یہ کیسا قرآن ہے, یہ کیسی قوم ہے کہ جو بات ان کے اپنے عمل کی تھی وہی نہ پڑھیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کو کوئی کتاب دی جائے کہ اس کو پڑھ کے آئیے تو پھر آپ کا انٹرویو شروع ہوگا, اور آپ وہ کتاب پڑھے بغیر آئیں اور انٹرویو میں بیسیوں غلطیاں کریں یہ سوچ کر کہ او ہو میں تو پڑھ کے نہیں آئی, مجھے تو موقع ہی نہیں ملا. تو بہرحال اگلے پارے پہ جانے سے پہلے پچھلے پارے کو اگر ہم دیکھیں 24ویں پارے میں, تو الحمدللہ ہم نے خوبصورت طریقے سے چیزوں کو دیکھا تھا. زمر کی آیت 32 سے لے کر 75, پھر اسے سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ کی 46 آیتیں ہم نے پڑھی تھی, جس میں علیہ اللہ بھی کافی نبدا کہ آپ کا دل دماغ اس چیز پہ آپ کو تھوڑا سا کچھ کچکل گاتا کہ میں فلاں وقت پہ کسی دوسرے کی طرف کیوں چلی گئی, میں نے فلاں کے وقت پہ دوسرے کے اوپر نظریں کیوں لگا دیں جبکہ میرا اللہ مجھے کافی تھا. اور زندگی میں جتنی بھی دفعہ لوگوں کے ہاتھوں شرمندہ ہوئے ہیں نا, مان لیجئے وہ اسی بات کی سزا ملی کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو کافی سمجھا. حسبی اللہ کہنے کے باوجود, حسبنا اللہ کہنے کے باوجود ہم اپنے رب کو سب کچھ سمجھنے کی بجائے کیا کرنے لگے, ہم اپنے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے بونوں سے, اپنے بھی قد سے چھوٹے لوگوں سے امیدیں لگانے لگے. تو وہی بات ہے کہ خدا سے تجھ کو نہ امیدی اور لوگوں سے امیدیں تو پھر اور کافری کیا ہوگی. تو یہ جرم تھا اور اس میں ہم نے بڑے خوبصورت طریقے سے دیکھا, لیکن اٹس ناٹ ٹو لیٹ. آج کیا کل کے پارے کے ساتھ ہی ہم نے نیت کر لی تھی کہ میں نے آج کے بعد کسی پہ نظریں نہیں لگانی, کام لے لینا ہے, موقع نیکیوں کے لیے ہوئے تو قبول کر لینے ہیں, لیکن یہ نہیں کہنا کہ یہ ہوگا تو یہ میری زندگی میں خیر ہوگی. ہمیں تو شروع سے نظریں لگانا ہی سکھایا جاتا ہے, اور ہوتے ہوتے پھر انسانوں کے اوپر اتنی نظریں لگتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی دنیا سے چلا جائے تو ہمارے لیے جینے مرنے کا ایک سامان بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہم نے پچھلے پارے میں بہت ہی خوبصورتی کی دیکھی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ ایک حجت تمام کرواتا ہے, اور ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم اپنی سی پوری کوشش کر لو کسی کو بھی ہدایت کی طرف خیر کی طرف بلانے کی, اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو. معذرت کا سکہ دنیا میں چلے گا آخرت میں نہیں. آج ہم بہت ساری معذرتیں کرتے ہیں, ہم اپنے بہت ساری چیزوں میں دوسروں کو مطمئن کرتے ہیں. وہ رش مل گیا تھا, یہ نہیں بتاتے کہ گھر سے نکلے ہی لیٹ تھے, نہیں وہ بچے نے یہ کر دیا, وہ ساس نے روک لیا, وہ میاں صاحب آ گئے اور یہ ہوا, ٹھیک ہے. لیکن دنیا کی کوئی عدالت ہمیں ایسے وقتوں میں پکڑ نہیں سکتی کیونکہ ہم سچے ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے آخرت کی عدالت میں ہماری ہر چیز جب کھل کر سامنے آ جائے گی نا, تو اس میں پھر ہماری حقیقتیں کھلیں گی کہ ہم کتنے مجبور تھے اور ہم کتنے سست تھے, یا ہم نے اس چیز کو کہاں سے کیسے لیا. پھر جسمانی اعضاء کی گواہی ہم نے سورت حمیم سجدہ میں پڑھی کہ کس طرح سے ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان نے اور ہماری کھالیں کل قیامت کے دن ہمارے ہی خلاف بول رہی ہوں گی. تو وہی بات ہے کہ ہم تو اپنے ہی سپائز اور اپنے ہی جاسوسوں کو خود ہی کھلا پلا رہے ہیں. तो अल्लाह करे कि ये हमारे हक में बेहतरीन तरीके से गवाही दे सके। फिर सबर के आला मुकामात को देखते हुए हमने जो पीछे मर्द मोमिन का किरदार देखा था उस पर एक छोटा सा नुक्ता, और वो क्या है कि मर्द मोमिन हो या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो, फिरौन के दरबार में पीयर प्रेशर में नहीं आए, लोगों से नहीं डरे और बोल दिया। आज हम इतने ज्यादा होने के बावजूद भी क्यों खौफ में आते हैं? एक जुमला जिसको आज अपने दिल की तख्ती पे लिखना है, मर्द मोमिन की नेकी में चूंकि इखलास था इसलिए आज, यानी आज की डेट लिख लीजिए जो भी आपको अपनी जगह पे मिल रही है, आज भी और कयामत तक उसकी नेकी लोगों की हिदायत का जरिया बन गई। यानी लोग हिदायत का जरिया कब बनते हैं? जब वो मुखलसीन होते हैं। इमाम मालिक के दौर में मौता इमाम मालिक लिखी गई तो बहुत सारे लोगों ने उसकी शोहरत से फायदा उठाते हुए अपने नामों से मौता शुरू कर दी। इमाम साहब के पास किसी ने आकर इत्तला दी तो उन्होंने कहा, फिक्र नहीं करो, मा काना लिल्लाही बकिया, जो काम अल्लाह के लिए होगा ना वही बाकी रहेगा। और आज देख लीजिए दुनिया में सिर्फ एक ही मौता है जो पढ़ी पढ़ाई जाती है, और वो मौता इमाम मालिक है। अल्लाह मुझे आपको इस तरीके से नेकियां करने वाला बने कि हम कॉपियर बनने की बजाय हकीकत के साथ अपने दिलो दिमाग के ऊपर जोर देते हुए और अल्लाह की मोहब्बत में वो नेकियां करें कि जो फिर हमारे बाद दूसरों की हिदायत का जरिया हो। फिर हमने पिछले पारे में सूरत मोमिन की आयत 60 में एक बड़ा प्यारा अल्लाह का हुक्म कह लीजिए या अल्लाह का एक फरमान सुना था कि उदउनी, तुम मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा कबूल करूंगा। ये जो इस्तजाबत है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। दरवाजा खटकाने वाले के लिए बिल आखिर दरवाजा खोल ही दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हम सब के दिलो दिमागों में बहुत सारे मसले मसाइल के साथ अपनी औलादों के मसले, औलादों की खुशियाँ, औलादों के अंदेशे होते हैं। तो आज आपको मैं एक नई दुआ सिखाने लगी हूँ। बच्चों के लिए आज ये दुआ करें कि जो आप उनके लिए दुआ कर रही हैं वो खुद भी अपने लिए वही दुआ करने लग जाए। अभी तक माओं की दुआएं कबूल क्यों नहीं हुई? क्योंकि बच्चों ने अपने लिए खुद से वो दुआएं की भी नहीं है। तो जब तक कोई खुद अपने लिए दुआ ना करे उसको दूसरे की दुआ भी फायदा नहीं देती। और एक शेर का एक मिसरा जो मुझे बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता है वो क्या है कि मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए और तेरी दुआ है कि तेरी दुआ कबूल हो जाए। क्या आज हम अपने औलादों और अपने इर्द गिर्द वालों के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो तो हमसे कहते हैं कि अम्मी मेरे लिए दुआ करें, और आप सोच में पड़ जाते हैं कि मैं इसके लिए क्या दुआ करूं और कैसे करूं? तो ये दुआ करिए कि उसकी दुआ ही बदल जाए, तो औलादों की दुआओं के किबले बदल जाए। फिर उसके बाद हामीम सजदा की आयत में आया था कि मा तश्तही अनफुसुकुम, फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हारे लिए जन्नतों में वो मिलेगा जो तुम चाहोगे। इसमें लफ्ज इश्तहा पे बस नजर डालिए। आप कहते हैं इश्तहा क्या होती है? जाती दुआएं, जात जो इंसान की पर्सनल ख्वाहिशात है ना। तो उलमा कहते हैं कि जन्नत में जाने से पहले फरिश्ते मौत के वक्त भी, और वही जो इस्तकामत की दुआएं हैं उसी के अंदर वो उसको कहेंगे कि तुम्हारी वो ख्वाहिश कि जो तुम्हारी पर्सनल थी। आप देखिए जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले। अच्छा, हमारे पास एक खातून थी, बड़ी उम्र की थी, उनकी शादी नहीं हुई सारी उम्र। तो वो जब दरसों में आती थी ना तो बाद में चुपके से कहती थी कि आप जब दुआ कराएंगी ना तो दुआ करिएगा कि मेरी शादी हो जाए। लेकिन मैं ये सबके बीच में नहीं कह सकती, लोग क्या कहेंगे इस बुढ़ापे में, इसको शादी की सूझी? लेट 50s या 60s में तो होंगी वो। तो कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं बताई जाती। अल्लाह कहते हैं वालकुम फी हमा यश्तहून। आप में से किसका दिल करता वो बहुत लंबी होती, पतली होती, गोरी होती, आंखें मोटी मोटी होती, पलकें वो झाड़ू की तरह होती? मा तश्तही अनफुसकुम, आप अपना ऑर्डर अभी से दे दीजिए, फरिश्तों ने आपके लिए ये दुआ अल्लाह के पास भेज दिया है कि अल्लाह ये बंदी सारी जिंदगी में जो मांगती रही और नहीं मिला, या फिर इसको मांगने में शर्म आती थी ना, वो इसको दे दे और मांगा करे। सहाबा कराम ने कई दुआएं रखी होती थी। एक दफा सहाबा बैठे थे तो उन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी क्या जन्नत में हमें खेती बाड़ी करने की इजाजत मिलेगी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये फरमाइश करने वाला कोई अंसारी ही होगा। तो याद रखिए कि किसी का बच्चा नहीं है दुनिया में है कि नहीं, वहां है नहीं, तो अल्लाह ताला से वहां दुआ करेगा कि अल्लाह ताला, मेरा दिल करता है मेरी बीवी के बच्चा हो। एक तो इतना बच्चा, एक बच्चे के होने की वो जो आरजू और वो तैयारियां और जो खुलबुलियां होती हैं, तो क्या अल्लाह के नबी वो दुआ कबूल होगी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक जन्नती के साथ ऐसा ही होगा कि वो ख्वाहिश करेगा कि अल्लाह मेरे बच्चा हो, देखते ही देखते उसकी बीवी प्रेग्नेंट होगी, फिर उसका बच्चा होगा, फिर वो बच्चा देखते ही देखते उसके बराबर हो जाएगा। वलकुम फी हमा तश्तहून। अल्लाह अकबर। ये दुनिया ख्वाहिशें पूरी करने की जगह नहीं, करवाने की जगह है। आज यहाँ वो काम कर लीजिए कि अल्लाह वहां पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अपनों के तो बंदा पीछे फिर रहा होता है कि आप बताएं आपको क्या पसंद है, दूसरे आपके पीछे पड़े होते हैं, कुछ हमें भी दे दें, कुछ हमारी भी सुन लें, कुछ हमारी भी मदद कर दें। तो दुनिया में आप ऐसे काम कीजिए कि जिसके बाद आपको अल्लाह खुद कहे कि अब मैंने अपने बंदे को ये देना है। और मैं आपको सच बताऊं, अगर आपको मेरी किसी बात पे यकीन है, ये दुनिया में ही शुरू हो जाता है मामला। सोचों पे काबू पाना पड़ता है, खौफ आने लग जाता है इंसान को कि कभी ऐसा तो नहीं कि मैंने अनजान पने में कोई बात कह दी। वो जिसको कहते हैं ना कि वो दिलों को पढ़ लेता है, वो आपके हाथों के उठने से पहले ही आपके दिल के अंदर छुपी हुई ख्वाहिशात को पूरा करता है। फिर इसके बाद वमन अहसनु कौला मिम्मन दा इलल्लाह। अब ये क्या मामला है कि अहसनु कौलन, ये इस पे चूंकि कल बहुत बात नहीं हुई और दिल में ही रह गई बातें और अभी भी रह ही जाएंगी, लेकिन बस एक जुमला, जो मेरे जैसे लोग जो दीन के नाम पर लोगों से कोई बात कहते सुनते हैं उनके लिए है। और वो क्या है कि अच्छी चीज अच्छे बर्तन में पेश करें तो अगले को खुशी होती है। बिल्कुल इसी तरह से अच्छी बात अच्छे अंदाज से कहेंगे तो असर रखेगी। हमारे लोगों का एक मसला भी यही होता है कि हम अच्छी बात तो कहते हैं अपने बच्चों से लेके हर एक कोई ऑलमोस्ट, लेकिन अच्छे अंदाज से नहीं कहते। तो तबलीग में मौसर अंदाज इख्तियार कीजिए। और बात यह है कि हम सब को अल्लाह से बेहतरीन दुआएं मांगनी है, क्योंकि दुआएं हमारी प्रायोरिटीज यानी तरजीहात, हमारे अरमान और हमारी असल शख्सियत की आयनादार होती हैं। आप असल में वही हैं जिसकी आपने दुआ मांगी। और बस आगे चलने से पहले एक और चीज, हमने सूरह जुमर के आखिर में स्टेप्स पढ़े थे हिदायत की तरफ आने के और बुलाए जाने के, उसको सामने रखते हुए जहन में रख लीजिएगा कि जितना ज्यादा आप अल्लाह की बताई हुई तरतीब पे तवज्जो रखेंगे, उतना ही अल्लाह ताला की रहमत से आपको खैर मिलेगी। हमने पहला मरहला देखा था अनीबु इला रब्बिकुम, फिर दूसरा था वसलमु, और फिर था वत्तबियो। यानी ये तीन चार स्टेप्स हैं, मैंने सिर्फ एक हिंट डाल दिया। कभी भी जिंदगी में आपको मौका मिला ना, तो इन आयतों की तफसीर सुन लीजिएगा। आपका दिल गवाही देगा कि आप वाकई संजीदगी के साथ अल्लाह ताला का कुर्ब पाना चाहते हैं। गेटिंग क्लोजर टू अल्लाह, उसका तरीका यही है। पहले बंदा रजू करता है, इनाबत आती है, फिर मुस्लिम बनता है, और फिर तो फिर वो कहते हैं कि हर बात पे पूछता है कि ए अल्लाह तू बता कि मैं क्या करूं। या यूं अल्लाह सीन आमनू पे इस बारे में तो कोई आयत नहीं। अब हम करेंगे आज के पारे को, और आज का पारा एक लफ्ज़ बोल दो जो दो लफ्ज़ों का मजमू है, वही इलाही। ये वो पारा है, ये वो लफ्ज़ है जिसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मोहम्मद रसूलुल्लाह में ढाल दिया। 12 रबी अव्वल थी कि 9 रबी अव्वल थी, उस दिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पैदा हुए थे। आपके दूसरे चचाओं की तरह अबू लहब ने खुशी मनाई, अपनी लौंडी सुहैबा को आजाद कर दिया। लेकिन 40 साल के बाद जब वही शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मोहम्मद रसूलुल्लाह में ढला, तो उसने उन्हीं को बददुआया कलेमात दिए। ये वही इलाही है जो इस वक्त आपके मेरे दिल दिमाग पर छाई हुई है। ये कुरान पाक की 6,000+ आयतें जो है ना, ये वही इलाही हैं। ये वही इलाही है जिब्राइल को बार बार लाती थी, और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी सल्लम की वफात पे रो रही थी, तो साथ ही उनकी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ थे कि अब जिब्राइल नहीं आएंगे। और इसी तरह से एक औरत रो रही थी और उसे कहा कि सब्र करो, अल्लाह के नबी आप पहले से अच्छी जगह में हैं। तो उसने कहा कि मैं तो इस पे नहीं रो रही, मुझे पता है कि आप यहाँ से तो अच्छे ही हाल में होंगे, लेकिन मैं इस पे रो रही हूँ कि अब जिब्राइल नहीं आएंगे। तो ये वही इलाही कोई छोटी चीज नहीं है। आज हम इसकी रोशनी में ना सिर्फ ये कि इकामते दीन देखेंगे, डिवाइन लॉज वर्सेस मैन मेड लॉज, और ये सारा थीम हमें ज्यादा दिखेगा सूरत शुरा में। और आप कह सकते हैं कि अल्लाह की बनाई हुई वही के मुकाबले में आज लोगों ने क्या क्या लॉज बना दिए हैं। हर मुल्क के अपने लॉज हैं, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में रहने वालों ने अपने लिए क्या कुछ रख दिया। तो नस्र मिन अल्लाह ही व फतहुन करीब। आज इस जुमले के साथ लिख लीजिए, अल्लाह की मदद का वादा उसी के साथ है जो वही इलाही के मुताबिक कानून साजी करेगा, चाहे वो एक औरत 5 से 6 फुट के जिस्म वाली उस पे वही इलाही को फिट करना हो कि युद्दीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, कि अपने सर पे एक ऐसी चादर ओढ़ लो कि जिसमें तुम्हारे पाँव तक छुप जाए, और चाहे ये वही इलाही एक शादीशुदा मर्द जब शादी कर रहा होता है तो उसके लिए रिजाल कवामून के हुक्म को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना हो, जिंदगी के हर पहलू पे जो आपके फराइज है ना, बींग अ मदर, बींग अ सिस्टर, और जो भी कह लीजिए, ये सब वही इलाही से तो आए। कुरान भी वही है और हदीस भी वही है। कुरान की वही को वही मतलूब कहते हैं जिसकी तिलावत की जा सके, मीम ता लाम वाव, और हदीस की वही को वही गैर मतलूब कहते हैं, यानी वो वही जिसकी तिलावत ना की जाए। ये बुनियादी फर्क है। या मलूमुल कुरान में पढ़ते हैं, अपनी फ्राइडे क्लास में भी और भी जगहों पे पढ़ते हैं इसको, तो क्या पता चला कि वही जो है वो पूरी शरीयत है। हमारे पास सिर्फ दो ही सोर्स हैं किसी बात को मानने के, या वही मतलूब है या गैर मतलूब है। तो आज भी अगर आप चाहते हैं अल्लाह की मदद आपके मुल्क में आए तो आपको इसको नाफिज करना पड़ेगा, आपके घर में अल्लाह की मदद आए इसी में, आपके रिश्तों में मिठास पैदा हो, आप अपनी जिम्मेदारियों को आसान दर्जे पे चला सकें, तो उसका तरीका यही है। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हकीकत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने जब इस पे अमल किया तो अपने भी खफा, मुझसे भी, बेगाने भी नाखुश वाली कैफियत तारी हो गई थी, लेकिन आप कहते रहे, हत्ता के लोगों ने आपको लालच दिए, धमकाया। आपने ने बोला कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन की फौज आ रही है, जो उस वक्त के हालात के मुताबिक बिल्कुल इम्पॉसिबल थी, ये तो ऐसी है जैसे आज कोई कहे कि अटलांटिक ओशन को पैदल को चल के पार करके आ रहा है, तो हम नहीं मानेंगे ना, नामुमकिन था क्योंकि पीछे पहाड़ी सिलसिला इतना बड़ा था। लेकिन लोगों ने कहा कि अगर आप ये बात कहेंगे तो हम मान जाएंगे, क्योंकि हमने आपको कभी झूठ कहते नहीं सुना। तो बस अल्लाह के नबी ने इस जुमले पे अमल करके कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, अपनों को नाराज किया, खानदानी रस्म रिवाज के बुत तोड़े। वो कहते हैं ना कि एप्पल ऑफ दी आईज थे, बिलवेड ऑफ दी कम्युनिटी थे, लेकिन साहिर मजनू कहलाए, तो फिर आपको मुझे भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ ना कुछ बातें तो होंगी, और जिसको सारे ठीक कह देना वो ठीक नहीं होता। वाकई अल्लाह का दीन ऐसा है कि ये कहने वाला हर एक को अच्छा नहीं लगता। फिर लोग क्यों नहीं कह पाते? उसकी वजह ये है कि ईमान कम है, उस दर्जे का ईमान नहीं है। तो ईमान की ताकत के लिए इस बारे में दो चीजें हैं, वामरुहुम शूरा बैनहुम, कामों को इज्तमाईयत के लेवल पे लेके चलना, वन मैन शो नहीं, आपस के मशवरे के साथ काम करना, इस्लामी शुराइत, और कह लीजिए कि इस्लामिक शूरा के ये मेन कंपोनेंट में से एक है। बाकी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जहां पहुंचेंगे सूरत शूरा की उनायात पे। आइए अब देखते हैं सूरत हामीम सजदा की आयत नंबर 47 से 54 तक इस बारे में आ रही है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इलैहि युरद्दु इल्मुस साअति वमा तख्रुजु मिन समरातिम मिन अक्मामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदउ इल्ला बिल्मिही वयौमा युनादीहिम अयना शुरकाई कालू आज़न्नाका मा मिन्ना मिन शहीद। क्या मेरी टोन से सिर्फ आपको तर्जमा समझ आया कुछ? कुरान को एक्सप्रेशंस के साथ पढ़ना सीखें, तर्जमा बहुत जल्दी याद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो रुकू नंबर 6 है, 47 से 54। अक्सर इंसान नाशुक्रे और बेसब्रे होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। क्यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है, यानी किसी को नहीं पता क्यामत कब आएगी सिवाय अल्लाह के। और जो जो फल अपने शगुफों से निकलते हैं, और जो मादा हमल से होती है, और जो बच्चे वो जनती है, सब का इल्म उसे है। और जिस दिन अल्लाह ताला इन मुशरिकों को बुलाकर दरियाफ़त फरमाएगा मेरे शरीक कहाँ हैं, वो जवाब देंगे कि हमने तो तुझे कह सुनाया कि हम में से तो कोई इसका गवाह नहीं। और जिन जिन की परस्तिश इससे पहले करते थे वो इनकी निगाह से गुम हो गए और उन्होंने समझ लिया कि अब इनके लिए कोई बचाव नहीं। भलाई के मांगने से इंसान थकता नहीं और अगर इसे कोई तकलीफ पहुंच जाए तो मायूस और नाउम्मीद हो जाता है। और जो मुसीबत इसे पहुंच चुकी है इसके बाद अगर हम इसे किसी रहमत का मजा चखाएं तो वो कह उठता है कि इसका तो मैं हकदार ही था, यानी आई डिजर्व इट ये स्टाइल। और मैं तो ख्याल नहीं कर सकता कि कयामत कायम होगी। हाँ, और अगर मैं अपने रब की तरफ वापस किया गया भी तो यकीनन मेरे लिए इसके पास बेहतरी है। ये चार मसले हैं जो इस आयत में आ गए हैं जो दौलत के साथ अमूमन बंदे के दिमाग में पेश हो जाते हैं। यकीनन हम इन मुनकरीन को इनके अमाल से खबरदार करेंगे और इन्हें सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। और जब हम इंसान पर अपना इनाम करते हैं तो वो मुंह फेर लेता है और किनारा कश हो जाता है। सोचिए अपना कोई रवैया खुशी के मौके का। और जब इसे मुसीबत पड़ती है तो बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला बन जाता है। अब सोचिए कोई दुख, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई जान माल औलाद घर का गम, उस वक्त क्या दिल था और वो क्या नमाजें थी जो उन दिनों में पढ़ी थी। आप कह दीजिए कि भला ये तो बताओ कि अगर ये कुरान अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ हो फिर तुमने इसे ना माना, बस इससे बढ़कर बहका हुआ कौन होगा जो मुखालफत में हक से दूर चला जाए। अन करीब हम इन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे यानी यूनिवर्स में, और खुद इनकी अपनी जात में भी, यहाँ तक इन पर खुल जाए कि हक यही है। क्या आपके रब का हर चीज से वाकिफ और आगाह होना काफी नहीं? यकीन जानो कि ये लोग अपने रब के रूबरू जाने से शक में हैं। याद रखो कि अल्लाह ताला हर चीज का अहाता किए हुए है। हमने जितनी भी आयतें पढ़ी हैं ना अभी तक, इसमें से इन सब का ताल्लुक कयामत से है। कैसे? देखिएगा, इलैही युरद्दू, उसी की तरफ लौटाया जा रहा है। ये लफ्ज दिखा रहा है कि दरख्त से एक फल का निकलना या माँ के पेट से एक जिंदा वजूद का पैदा होना कितना नामुमकिन है, लेकिन चूंकि ये हर रोज हो रहा है, जब से हमने आंखें खोली होश संभाला हम दरख्तों पे फल लगते भी देख रहे हैं और माँ के पेट से बच्चे निकलते भी देख रहे हैं, हम हैरान नहीं होते। अल्लाह ने ऐसी चीजों को जो रोज वो कर रहा है ये साबित किया, ऐसे ही है जैसे मौजूदा दुनिया के अंदर से आखिरत का बरामद होना। मक्का वाले मरने के बाद जी उठने को नहीं मानते थे, ये तो सब मानते हैं, इसका तो इनकार कोई कर नहीं सकता कि मौत आएगी। इसकी तो गवाहियां रोज जाकर किसी भी चैनल से पूछ लीजिए कि रोज दुनिया में कितनी अमवात होती है, डेथ सर्टिफिकेट कितने जाते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दहरिये भी नहीं करते, एथियस भी नहीं करते, एग्नोस्टिक भी नहीं करते, इल्हामी मजाहिब वाले क्या करेंगे, लेकिन इसको नहीं मानते थे कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना। मैं युही लिजाम वही रमीम कुल युही हल्लजी अनशा अव्वल मर्रा। अल्लाह ने इन आयात में उनको ये सबक दिया कि बेफल को फल में तब्दील होते हुए हर रोज देखते हो, तो क्या तुम्हें ये यकीन नहीं है कि कल आखरत में तुम्हारे आमाल के फल तुम्हें मिलेंगे? कड़वे अमल करोगे तो कड़वे फल, फमै यामल मिसकाल शर्र यरा, और अच्छे आमाल वालों को अच्छे फल, फमै यामल मिसकाल जरूरतन खैर यरा। तो ये सारी आयतें बता रही हैं कि क्यामत आएगी। अल्लाह ने 49 आयत में जो एक इंसान की तबीयत और ह्यूमन नेचर की बात करते हैं ना, वो क्या है कि दुख में अल्लाह की तरफ और सुख में अल्लाह से दूर, हत्ता के सुख में तो ये कहने लगता है कि अब खुशी में ना अल्लाह को नाराज करूं तो कब करूं। तो लिखिए मुसीबत का लम्हा इंसान के लिए अपनी दरियाफ्त का लम्हा होता है, डिस्कवरी। वी डिस्कवर आवर सेल्स ड्यूरिंग द क्लैमिटीज, प्रॉब्लम्स, बीमारियां, परेशानियां। इस वक्त वो खुद सरी को भूल कर खुदा सरी करने लगता है। ये सरी क्या होता है पता है आपको? खुद सर, मैं ही सब कुछ, अपने ही गुण गाता है, लेकिन फिर वो खुदा सरी करने लगता है और जान लेता है कि वो अब्द है और अल्लाह इसका माबूद। यानी फितरत पे पड़े हुए सारे पर्दे छट जाते हैं दुख और तकलीफ में और बंदा हकीकत में वादा लस के ऊपर वापस आ जाता है। तो आपके लिए मेरे लिए अमल के नुक्ते क्या है कि सिर्फ गम में ही नहीं खुशी में भी अल्लाह को याद करके शुक्र अदा करना है, कयामत की बजाय दुनिया में ही अपनी गलतियों को तस्लीम करके अपनी इसलाह करनी है। सूरत आमीन सजदा पूरी हुई, आपने देखा था कि आगाज में भी कुरान की बात थी और इख्तिताम में कायनात की बात है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कौल है और कायनात अल्लाह का फेल है और उसके कौल और फेल में कोई तजाद नहीं। इसी तरह कुरान पढ़कर जैसे हिदायत मिलती है, कायनात को देखकर उसके बारे में गौर व फिक्र से भी हिदायत मिलती है, तो ये दोनों हिदायत का जरिया है। किताबें तो हर एक नहीं पढ़ सकता ना, पढ़े लिखे नहीं होते लोग, नाबीना भी होते हैं, लेकिन कायनात को पढ़ने के लिए तो ना आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, ना फ्रेंच की ज़रूरत है, ना नॉर्वेजियन की ज़रूरत है। असल बात यह है कि हमने बचपन से ही अपने बच्चों को अगर गौर व फिक्र सिखा दिया, इंशाल्लाह कुरान पढ़े ना पढ़े, कायनात को पढ़ के अपनी ज़ात में वो चार पांच किस्म की निशानियां जिसकी इस वक्त ज़रूरत नहीं, आप किसी न किसी लम्हे में अपने रब को पा लेंगे।